पृष्ठ संख्या 118, अध्याय 10, कायदा। स्वतंत्र तबला वादन की भूमिका एवं रूपरेखा हम पहले ही स्वतंत्र अध्याय देख चुके हैं तथा यह भी जान लिया है कि कायदे का प्रस्तुतीकरण एकल तबला का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। कायदा एक सूत्रबद्ध रचना होती है। इसमें विस्तारक्षम का बीज बोया रहता है। कायदे का प्रस्तुतीकरण खाली भरी नियम से करना पड़ता है, इसलिए वह दो पंक्तियों में विभाजित होता है। फलतः पद का यमक अपने आप पैदा होकर उसका पद रचना में रूपांतर होता है। कायदे की व्याख्या अनेक विचारवान वादकों ने की है। उनमें से कुछ व्याख्याएं अध्ययन के लिए नीचे उद्धृत की जाती है। व्याख्या: वह बोल समूह जिसकी रचना ताल के विभागों के आधार पर हो और जिसके बोलों का विस्तार भली भांति हो सकता हो, उसे कायदा कहते हैं। पंडित नंदलाल शर्मा, पथिक, तबला विज्ञान। व्याख्या दो: कुछ नियमित और सुनिश्चित बोलों के समूह का नाम कायदा रखा गया है। पंडित सत्यनारायण वशिष्ठ। व्याख्या तीसरा: कायदा तबला वादन का वह महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें मुख का पहला अंग स्वर होता है तथा मुख के बोलों का ही विस्तार उसमें विशिष्ट क्रम से आवश्यक होता है तथा जो खाली भरी तथा खंड से युक्त होता है। पंडित अरविंद मूलगांवकर, तबला पुस्तक से। उपर्युक्त व्याख्याएं कायदे के विषय में न कोई महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं, किंतु वे पेशकार एवं रेला लग्गी संकल्पना के लिए भी लागू हो सकती हैं। अच्छे व्याख्या के बारे में कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की जाती हैं। ये अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं: प्रत्येक व्याख्या वैज्ञानिक हो, व्याख्या अति विस्तृत या अति संकुचित न हो, व्याख्या वर्णनात्मक न हो, कायदे की व्याख्या के गुण नाप की पटरी से परंपरागत एवं नवनिर्मित सब कायदे व्याख्या में अंतर्भूत हो तथा इस व्याख्या के निकष पर पेशकार, रेला आदि रचनाओं का अलगपन सिद्ध हुआ हो। पृष्ठ संख्या 119। इसके अध्ययन के लिए हम यहाँ 5 कायदे की और 1 रेले की, इस प्रकार 6 रचनाएं और स्वरमय शब्दों की 1 और 7वीं रचना भी लें। ये रचनाएं इस प्रकार हैं: कायदा धाधा तीट धाधा तिन्ना धाधा तिरकिट धाधा दिन्ना धाति धागे न धा तिरकिट धाति धागे तीना किन्ना धा न धा तक धिन तुना धा तक धिन तुना किन धा न धा तक धिन तुना किन धात्रक धिन गिन धागे त्रक धिन गिन धागी न धात्रक धिन धागे न धा धिन गिन धागे तिट तागे त्रक तीना किन तागे तिट धागे न धात्रक धिन धागे त्रक धिन गिन। रेला धातिरिकिट तक धिरधिर किट तक धातिरिकिट तक तुन्ना किट तक। अन्य रचना 7वीं: धागे धीना गिन धागे धीना गिन धीन गिन धागे धीना गिन धागे धीना गिन दिन किन। उपर्युक्त 5 कायदे चुनने के मूल में कुछ उद्देश्य निहित हैं। अ: पहले 2 कायदे 4 मात्राओं के आकार के हैं, छोटे आकार के कायदे हैं। ब: तीसरा और चौथा 8 मात्राओं के आकार के हैं, मध्यम आकार के कायदे हैं। पांचवा कायदा 16 मात्राओं के आकार का है, दीर्घ आकार का कायदा है। विज्ञान और शास्त्र के क्षेत्र में जो विधान किए जाते हैं उनके बारे में यह अपेक्षा होती है कि वे अचूक विषयानुरूप और सार्थक शब्दों में व्यक्त किए जाएं। इसी दृष्टिकोण से कायदा और तत्सम अन्य रचनाओं में भी इसी तथ्य का पालन होना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 120। कायदा एक सूत्र रूप विचार विधान होता है, अतः कायदे की मूल रचना बनाते समय यह संकेत है कि उसमें कम से कम शब्दों का इस्तेमाल हो। चूंकि इस रचना के विस्तार बीज अंगभूत होते हैं, विस्तार की प्रक्रिया में छोटे कायदे का बड़े कायदे में रूपांतर हो सकता है। कायदे की रचना इस प्रकार की गई होती है कि जिससे विशेष शब्दों की पुनरावृत्ति करना बहुत सुलभ होता है। पुनरावृत्ति के प्रयोग में कायदे का प्रत्येक नया पलटा मानो एक प्रकार का नव रूप धारण किया हुआ मूल कायदा ही है। इन नए नए रूपों की खोज के दौरान प्रस्तार के नियमों की निर्मिति हुई और विस्तार क्रिया को दिशा प्राप्त हो गई। एक ही वस्तु की ओर अगर हम अलग अलग दिशाओं से देखें तो उस वस्तु का कुछ अलग ही रूप जो कुछ नया होता है हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार अनेक दिशाओं से देखे हुए रूप जब किसी सूत्र के रूप में अनुशासनबद्धता एवं कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तब उस क्रिया को हम कायदे का विस्तार कहते हैं। कायदे का निर्माण स्वरमय शब्द, व्यंजन प्रधान शब्द एवं स्वरमय अंत्य पद जैसी विविध जातियों के सुसंवादी शब्द प्रयोगों के माध्यम से योजनाबद्ध रूप में किया जाता है। इन विविध शब्द संकल्पनाओं और उनके लक्षणों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा इसी पुस्तक में अन्यत्र की गई है। उपर्युक्त 7 रचनाओं के विषय में अधिक जानकारी इस प्रकार है। रचना क्रम 1, 2, 3, 4 और 5 में क्रमशः स्वरमय शब्द और व्यंजन प्रधान शब्द दोनों का प्रयोग हुआ है। रचना क्रम 6 के सब शब्द व्यंजन प्रधान है, इसमें स्वरमय शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रम संख्या 7 के सब शब्द स्वरमय है, इनमें व्यंजन प्रधान शब्दों का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। कायदे के संबंध में इसमें स्वर इसमें प्राप्त ज्ञान के आधार पर हमें ज्ञात है कि पहली 5 रचनाओं को कायदा कहते हैं। इन सभी 5 कायदों में व्यंजन प्रधान शब्दों एवं स्वरमय शब्दों का संयुक्त प्रयोग हुआ है। यह बात हमारे ध्यान में आ जाएगी कि उपर्युक्त 5 कायदों में अंत्य पद में आए हुए शब्द स्वरमय हैं। किम बहुना हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कायदे में व्यंजन शब्द और अथवा व्यंजन प्रधान शब्द होते हैं, किंतु कायदे की रचना के अंत्य पद में स्वरमय अंत्य पद का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इस निष्कर्ष की पार्श्वभूमि पर यह पाया गया है कि रचना क्रमांक 6 में सभी शब्द व्यंजन प्रधान हैं तथा उसमें स्वरमय अंत्य पद का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तथा रचना क्रम 7 में स्वरमय अंत्य पद शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, किंतु संपूर्ण रचना में एक भी व्यंजन प्रधान शब्द नहीं है और सभी स्वरमय शब्दों की योजना के फलस्वरूप यह रचना वजनदार एवं पूर्ण रचना जैसी महसूस नहीं होती। पृष्ठ संख्या 121। इन तौलनिक अध्ययन के आधार पर हम यह भी विचार कर सकते हैं कि व्यंजन प्रधान शब्द कायदा रचना में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, बल्कि वह रचना की आत्मा ही है। स्वरमय अंत्यपदी शब्दों को कायदे में सहायक शब्दों के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। व्यंजन प्रधान शब्दों का बंद निकास और स्वरमय अंत्यपदी शब्दों का गूंज युक्त निकास इन विरोधी ध्वनियों के माध्यम से सौंदर्य निर्माण करने वाले तत्व का अवलंब प्रमुखतया कायदा रचना में कलात्मकता के साथ हुआ करता है। कायदे का जब हम अधिक सूक्ष्मता से विचार करने लगते हैं, तब हम और बात हमारे ध्यान में आती है कि कायदा ताल के ठेके के साथ, ठेके की खाली भरी के साथ मेल साधने वाला हुआ करता है। और यह बात भी हमारे ध्यान में आ जाती है कि कायदा हमेशा तालाकार होता है। कुछ कायदे ताल के खंडों के अनुरूप बांधे हुए होते हैं, तो कुछ अलग-अलग खंड रचना में। विस्तार की अत्यावश्यकता एवं महत्व के विषय में हमने शुरू में ही विचार प्रस्तुत किए हैं। इन सब का विचार करके कायदे की अर्थपूर्ण व्याख्या इस प्रकार होगी। कायदा सुनियोजित एवं सुनिश्चित व्यंजन प्रधान शब्द या शब्द समूह है, और उनके पूरक सहायक स्वर में अंतिम शब्दों की बनी हुई विस्तारक्षम, खंडबद्ध, खाली भरी युक्त और तालाकार एवं कलापूर्ण ऐसी रचना है जिसका प्रस्तुतिकरण साधारणतः मध्य लय में होता है। कायदा रचनाओं का प्राथमिक उपयोग अलग-अलग व्यंजन प्रधान शब्द हाथ में बिठाने के लिए हुआ करता है। आरंभ में आसान शब्दों वाले और तत्पश्चात कठिन शब्दों के कायदे सिखाए जाते हैं। लखनऊ घराने के उस्ताद अफाक हुसैन खां कहते हैं, प्रथम दिल्ली के कायदे निम्नलिखित क्रम से सिखाई जाए। धाति धाति धाधा धिन्ना, दूसरा धाधा तीट धाधा तूना, तीसरा धाधा तिरकिट धाधा तुन्ना, चौथा धाति धागे नधा तिरकिट धाति धागे तीना की। इन कायदों को बिठाने के बाद त्रक और तीट शब्दों से सम्मिश्र प्रकट कायदे सिखाए जाएं। पृष्ठ संख्या 122। प्रतिभावान कलाकारों के कायदे के अभ्यास और उस पर किए गए चिंतन के फल स्वरूप उनके पलटे निर्माण होते गए, और उन विविध पलटों के प्रस्तुतिकरण में कलात्मक सुसूत्रता निर्माण होने लगी, तथा धीरे धीरे कायदे के प्रस्तुतिकरण को सोलो वादन में स्थान प्राप्त होने लगा। दिल्ली और अजराणा घराने के तबला वादकों को कायदे का प्रस्तुतिकरण इतना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि वे मुख्यतः कायदे के वादन को ही सोलो तबला वादन मानते हैं। कायदे के अभ्यास, रियाज और चिंतन तथा उनकी विस्तार क्रिया के अभ्यास और मनन के जरिए विद्यार्थियों की तांत्रिक और बौद्धिक क्षमता वृद्धिगत होती है। कायदे का रियाज मानवीय हाथ के चलन क्षमता और क्रियात्मक वादन कौशल को बढ़ाने वाला कसरत का एक प्रकार है। इट इज अ नेचुरल एक्सरसाइज फॉर मोटर मूवमेंट्स एंड परफॉर्मेंस आल्सो। कायदे के विस्तार के सूत्र में से संभवतः रेले की कल्पना प्रकट हुई हो। दिल्ली घराने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने वाला जो पेशकार वादन है, उसके विस्तार के लिए भी कायदे के विस्तार सूत्र संभवतः उपयोग में लाए जाने लगे हों। स्वतंत्र तबला वादन का विचार और फलतः रचना निर्मिति प्रधानतः त्रिताल में हुई। त्रिताल की जाति चतरस्र जाति है, और कायदे की व्याख्या का विचार करते समय हमने यह भी देखा कि कायदा खंडबद्ध, खाली भरी युक्त और तालाकार रचना है। इस विचार के प्रभाव के फल स्वरूप दिल्ली घराने में विविध कायदे चतरस्र जाति में बांधे गए। अजराणा घराने ने नावीन्य पैदा करने के लिए बहुतेरे कायदे तिस्र जाति में बांधे। तिस्र और चतरस्र जाति के माध्यम से अपेक्षित विचार व्यक्त करने के लिए प्रत्यक्ष वादन के अनुभव और उस पर किए गए विचार मंथन के फल स्वरूप प्रभावकारी तिस्र और चतरस्र जाति में शब्द संपदा निर्माण हुई, विकसित हुई और समृद्ध हुई। कायदे के प्रस्तुतिकरण घरानेदार परंपरा एवं संकेतों से हुआ करता है, जो इस प्रकार है। पहला, कायदा पहले धीमी लय में खाली भरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुतिकरण 1 से 2 आवर्तन तक उसी लय में किया जाता है। समर्थ कलाकार इस धीमी लय में भी एक अलग ही नजाकत या ढंग से वह कायदा पेश करता है। इसका उद्देश्य कायदे की रचना श्रोताओं के ठीक ध्यान में आ जाए और कायदे के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में वे उस लय को अपने मन में पकड़कर पक्की कर लें, यही होता है। दूसरा, कई बार कायदा बाद में आड़ लय में प्रस्तुत किया जाता है। पृष्ठ संख्या 123। यदि कायदा ड्योढ़ी लय में हो तो उसे चतरस्र में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ जाति परिवर्तन होने से श्रोता को अलग प्रकार का आनंद मिलता है। तीसरा, श्रोताओं के इस परिवर्तित लय में स्थिर होने पर फिर मूल रचना की दुगुनी लय में उक्त कायदे का प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। और यहाँ प्रमुखतः कायदे के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ होती है। विस्तार संकल्पना विषयक विचार स्वतंत्र रूप में अलग अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। सभी कलाकार कहते हैं कि कायदे के विस्तार में व्यंजनों एवं व्यंजन प्रधान शब्दों को प्राधान्य हो। कुछ खानदानी वादकों को लगता है कि स्वरमय अंत्य पद का उपयोग रचना में विशेषतः अंत्य पद के पहले बार बार नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक यह विचार सही है, किंतु उस्ताद हबीबुद्दीन एकाध पलटे में पूर्वार्ध में व्यंजन प्रधान तिट तिरकिट जैसे शब्दों का खास प्रयोग करके श्रोताओं के मन पर एक कलात्मक तनाव पैदा करते थे और उसी पलटे के उत्तरार्ध में स्वरमय शब्दों की बरसात करके उक्त तनाव को दूर कर श्रोताओं को कलात्मक दिलासा देते थे। इन दो प्रस्तुतियों के प्रकारों की अनुभूति के बाद एक ही बात ध्यान में आ जाती है कि प्रत्येक कलाकार का कला निर्मिति का जो लक्ष्य होता है उसे साध्य करने का उसका अपना एक तंत्र वह अमल में लाया करता है, और यह तंत्र क्या हो इस बारे में दूसरा भला क्या मत व्यक्त कर सकेगा। और फिर ऐसे मत प्रदर्शन का कोई खास मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि जब तक चाहे किसी भी तंत्र से क्यों न हो असली सौंदर्य निर्मिति हो रही हो वह तंत्र संबंधित कलाकार के लिए योग्य तंत्र ही है। कायदे की समाप्ति तिहाई से करने की प्रथा है। पुरानी परंपरा के कलाकार एक अत्यंत आसान तिहाई लेकर कायदे का प्रस्तुतीकरण पूरा कर दिया करते थे, किंतु आज विविध आकारों और विरामों की तिहाई लेकर कायदा समाप्त करने की प्रथा लोकप्रिय बनती जा रही है। कायदे का अभ्यास और उसका कलात्मक प्रस्तुतीकरण सितार सरोद की तबले की साथ संगत में प्रभावात्मक ढंग से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए कलाकार को विचार और चिंतन करना चाहिए और साथ ही उसे प्रयोगशील भी होना चाहिए। कायदे की रचना और उसका विस्तार सदैव एक जाति में हुआ करता है, चाहे वह जाति कोई भी क्यों ना हो, किंतु एक ही कायदे में दो जातियों का अवलंब किया हुआ नहीं पाया जाता। इस संदर्भ में विचार करते समय यह बात ध्यान में आती है कि त्रिताल में चतरस्र और तिस्र जाति के शब्दों की जितनी असली रचनाएं संभव हैं वे सब हो चुकी हैं। विविध प्रकार के जोड़ कायदे भी निर्माण हुए हैं। पृष्ठ संख्या 124। त्रिताल में नए और असली कायदे अब एक ही रचना में दो या अधिक जातियों का उपयोग करके बनाना संभव है, किंतु ऐसे कायदे बनाकर उन्हें विचारपूर्वक और तैयार करके बजाए बगैर उसकी प्रभावात्मकता मालूम नहीं पड़ेगी। पंडित सुधीर कुमार सक्सेना ने इस मुद्दे पर पर्याप्त विचार किया है। उनके विचार के अनुसार बांधी हुई रचना इस प्रकार हो सकती है। धागे तेटे केट तीट क्रधे तेट, धागे तेटे क्रधे तेटे धागे नागे तीना केना।